पुण्य और पाप शुभ और अशुभ साम्य अवस्था में आते हैं तभी मनुष्य शरीर होता है। तो अब पुण्य करते हैं, पुण्यमय वातावरण होता है तो अपने पुण्य की जो धाराएं हैं उसको बल मिलता है और आदमी सुखद अनुभव करता है। अगर पाप कर्म करते हैं तो पाप के संस्कार, जो पाप की धाराएं वो जुड़ जाती तो आदमी को अशांति दुख बेचैनी मिलती। आपके चित्त में कब पुण्य की धारा बहती है और कब पाप की धारा बहती है उसका थर्मामीटर मैं तुमको दे देता हूं, कल्पना करो। कोई महात्मा अथवा कोई व्यक्ति जा रहा है, दो आदमी खड़े हैं, एक ने उसको देखा, बोले ये तो कैसा है, ऐसा है, वैसा है करके उसने दुख पैदा किया, दूसरे ने उसमें सद्भाव करके सुख पैदा किया। आदमी तो वही का वही। मान लो महात्मा संत जा रहे, अगर कोई पापी होगा उसकी पाप की धारा चल रही और पापी है, अरे के ये साधु संतों ने देश का सत्यानाश कर दिया, ये साधु संत ऐसा ऐसा वैसा सोच के अपने दिल में पाप और अशांति बढ़ा देगा। दूसरा आदमी देखेगा कि इतने हलाहल युग में सारा विश्व अशांति की आग में जल रहा है, फिर भी हजारों आदमी जिनकी बात मानते, लाखों आदमी जिनका, करोड़ों आदमी सत्संग सुनते, कैसी भगवान ने विलक्षणता दी, आह उसकी पुण्य की धारा संत में विलक्षणता दिखाएगी और उसकी पाप की धारा संत में दोष दिखाएगी। संत तो जो है वो है, समझो कोई संत है आप दर्शन करने गए, अगर पुण्य की धारा है संत के दर्शन करें, हाथ जोड़े कि आप खुश हो जाएंगे कि चलो दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा हुआ है। दूसरा आदमी पाप की धारा बह रहे कि हम तो गए इतना दूर से दर्शन करने और हमारे सामने ही नहीं देखा, हमने हाथ जोड़े तो हमको हाथ भी नहीं जोड़े, यूं भी नहीं करा, ऐसे कोई संत होते होंगे तो ये पाप की धारा दोष दर्शन पैदा कर देगी, पुण्य की धारा गुण दर्शन पैदा कर देगी और भगवत धारा भगवत भाव पैदा कर देगी, ब्रह्म की धारा ब्रह्मानंद पैदा कर देगी। तो दुनिया कैसी है, कोई व्यक्ति कैसी है, वो व्यक्ति कैसी है मत सोचो, देखने वाला कैसा है, देखने वाले की नजरिया कैसी है, देखने वाले की धारा कैसी है, उसको ऐसा ही लगेगा जगत। तो जगत सापेक्ष है, जगत कैसा है इसका कोई ठोस निर्णय नहीं आ सकता, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, सरकने वाला है, लेकिन जगत कैसा क्या कैसा है नहीं, देखने वाला कैसा है, देखने वाला जिस धर नजरिया से देखता है उसको जगत उसी ढंग का देखेगा। बकरे को कसाई देखता है तो सोचता है कि 15 किलो माल होगा, चमार देखता है तो सोचता कि 4.5 फीट से 5 फीट माल होगा, और रबारी देखता है तो बोले कि 1 लीटर तो आराम से देगी दूध, 1 लीटर माल रोज मिलेगा। और ये दलाली का धंधा करने वाला बोले 15 से 25 रुपया अथवा 50 रुपया दलाली मिल जाएगी, बकरा तो वही का वही है। अब भक्त बोलेगा भगवान का मूंगा प्राणी है, अब वेदांति बोलेगा कि ब्रह्म की लीला है, बकरा तो वही का वही, देखने वाले की जो नजरिया। माँ के सामने तुम बेटे हो और बेटे के सामने तुम माँ या बाप बन जाते हो, पति के आगे पत्नी बन जाती हो और बेटे के आगे माँ, बहू के आगे सासू बन जाती, ननंद के आगे भाभी और भाभी के आगे ननंद बन जाती, देरानी के आगे जेठानी बन जाती और जेठानी के आगे देरानी सुकड़ जाती। दुनिया ईश्वर की दुनिया में तो एक माँ ही है, लेकिन किसी की बेटी है, किसी की दोती है, किसी की पोती है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, किसी की चेली है, तो किसी की गुरु भी बन जाती। तो वही क्यों वही, किसी की पड़ोसन तो कईयों की दुश्मन भी, ये तो ऐसी है तो वैसी के वैसी, एक की एक। तो देखने वाले की कैसी कैसी नजरिया है। तो दो प्रकार की सृष्टि है, एक है ईश्वर रचित सृष्टि और दूसरी है जीव कल्पित सृष्टि। ईश्वर रचित सृष्टि में तो एक कन्या है अथवा एक माई है, जीव की कल्पना में वो किसी की बेटी, किसी की दोती, किसी की पोती, किसी की मौसी, किसी की बुआ, किसी की हुआ खुआ, जो भी मान लो क्या क्या होता है। अब वो मर गई तो किसी की बेटी मरी, किसी की माँ मरी, किसी की नानी मरी, किसी की दादी मरी, किसी की दुश्मन मरी, तो किसी की सहेली मरी। मरी तो एक, लेकिन सहेली जिसकी थी उस सभी की सहेली एक वो मरी। वो बोलेगी मेरी सहेली मर गई, मेरी सहेली मर गई, मेरी सहेली। बच्चे बोलेंगे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। तो ये जीव कल्पित सृष्टि में ममता है, राग है, द्वेष है। ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर में राग द्वेष नहीं है। और ईश्वर के रचे पांच भूतों में भी राग द्वेष नहीं है। जैसे गंगा जल है, गंगा है या कोई भी नदी, शेर पानी पीने जाए और गाय पीने जाए तो दोनों को वही का वही देगी। ऐसा नहीं कि गाय अमृत तुल्य दूध देती है तो उसको बढ़िया जल लो, और शेर मार देता है पंजा तो इसके लिए पानी खराब कर दे, ऐसा नहीं। सूरज भी सबको वही प्रकाश देता है, हवाएं भी सबके लिए वही की वही। तो ईश्वर के पांच भूत में समता है, ईश्वर में समता है, लेकिन जीव में राग और द्वेष अपना और पराए की कल्पना से झंझटबाजी बढ़ जाती है। अगर जीव भी अपने ईश्वरत्व का अभ्यास करे तो, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप तो ईश्वर है, हर तरंग का वास्तविक स्वरूप तो जल है, ऐसे हर जीव आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा है। बोलते भी है आत्मा सो परमात्मा। वही जीव है अगर श्रेष्ठ कर्म करता है तो धीरे 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 उसकी प्रज्ञा वृद्धि होते होते, विकास होते होते इंद्र बन जाता है, देवदूत बन जाता है, यक्ष गंधर्व बन जाता है, यहाँ तक कि वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, ब्रह्मा जी बन सकता है साधन तप करके। और वही जीव है जो आया मन में खा लिया, जो आया वो कर लिया, झूठ कपट निंदा चुगली तमोगुण रजोगुण ऐसा वैसा, रात्रि का स्नान, रात्रि का भोजन, शराब कबाब ये सब, तो धीरे 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 उसका शरीर तो बीमार होता ही जाएगा, बुढ़ापा तो बुरा होगा, लेकिन पराश्रित जीवन होते होते नीच विचारों में रमण करने वाला फिर धीरे धीरे नीच योनि बना पाकर एक रेंगता हुआ अलसिया बन सकता है, चूहा बन सकता है, कुत्ता बिलार बन सकता है, बैल बन सकता है। अगर संग अच्छा मिल जाए तो वो कीड़ा भी महात्मा ऋषि बन सकता है। एक बार भगवान वेद व्यास जी पसार हो रहे थे तो एक पन्नाली से नाली से कीड़ा रास्ता पार कर रहा था। वो जमाने में डामर नहीं था, जो भी सड़कें होती पहले के जमाने की ईंटों की या जैसी भी, तो जल्दी जल्दी पार कर रहा था। तो वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देकर उससे पूछा कि तुझे कौन सी दुकान पे पहुंचना है या कहीं राशन कार्ड लेके जाना है, तो काहे को इतना जल्दी जा रहा। सड़क के इस किनारे जो नाली बहती है उसमें से निकल के तू उस किनारे जाएगा तो जल्दी जाने से क्या फायदा। बोले महाराज बैलगाड़ी आ रही, उसका आवाज सुन रहा हूं, तो ये बैलगाड़ी मुझे कुचलने दे इसलिए मैं जल्दी रास्ता पसार कर रहा। बोले कुचल देगी तो क्या है, यहां तेरी क्या उद्योगपतिता है, एक कीड़े के शरीर से जान छूटेगी दूसरा शरीर देंगे भगवान। बोले महाराज आप तो जानते हैं जिस शरीर में जीव आता है वही प्यारा लगता है, चाहे कैसा भी हल्की योनि हो फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। व्यास जी तो जानते थे कि ये आत्मा अमर है, इसलिए जिस शरीर में जाएगा तो उसी को भी अमर बनाने में लग जाता है। इसीलिए तो औषधियाँ दवाइयाँ वज्र भस्म सुवर्ण भस्म और पलाने खाओ और डींगड़े खाओ च्यवनप्राश खाओ आसन करो ये करो बने रहो ये तो बन है ना। और टिकने वाला नहीं, ये सब जानते, फिर भी वो आत्मा की अमरता हर शरीरों में अपना रंग दिखाती। व्यास जी ने कहा देख अब संत की बात मानने से मंगल होता है तो अपना ये शरीर यहाँ त्याग कर देगा, मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा तुझे महापुरुष बनाऊंगा। कीड़े ने बात मान ली है वेद व्यास जी महाराज की, कीड़ा वहां पड़ा रहा, बैलगाड़ी के पैरों तले कुचल गया, उसका अंतवाहक खरगोश के शरीर में आया, कीड़े से तो खरगोश। विशेष प्राणी हो गया, फिर खरगोश मरा और हिरण बना, हिरण को शिकारी ने बेदा तो शिकारी को देखते देखते मरा और शिकारी के घर मांस के रूप में वो शिकारी के घर बेटा पैदा हुआ, व्याघ्र हुआ, व्याध, व्याध बना शिकारी। व्यास जी उसको व्याध को दर्शन दिए कि तुम्हारा मेरा पुराना संबंध है, तुम नहीं जानते हो, लेकिन मेरे को देखकर तुमको स्नेह होता है ना, हाँ, तो किसी न किसी जन्म में अपना संबंध था इसलिए स्नेह होता है। भगवान का स्मरण करा कर कैसे, वो भील का छोरा शिकारी का छोरा मरा तो जंगल में घूमने के कारण ऋषि मुनियों के दर्शन प्रसन्न होते थे और व्यास जी का संकल्प भी था। कुशारु ऋषि के घर मित्रा माता के गोद उसका जन्म हुआ, उसका नाम मैत्री रखा गया और मैत्री को व्यास जी ने मंत्र दीक्षा दे डाली 4-5 साल की उम्र में। मंत्र शक्ति अद्भुत शक्तियों के खजानों को खोलने की कुंजी है। भक्ति का 5वां सोपान है मंत्र दीक्षा। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, शब्दों में फालतू जो शब्द है उनमें वो शक्ति नहीं होती। फालतू शब्द उच्चारण करते करते 30 साल तक वो शब्द उच्चारण करो तो इतनी गर्मी बनती है कि एक कप पानी गर्म कर सको, लेकिन मंत्र जप करो तो ऐसी दैविक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है के पाप के बीजों को सेक देती है, हताशा निराशा को उखाड़ फेंकती है और बल आ जाता है। केवल 6 बार हरिओम हरिओम जप करो, 7वीं बार उसकी ऊर्जा मन में महसूस होने लगेगी। वहां 30 साल करो, यहां तो 6-7 बार करो तो इतना उसका अलौकिकता का अनुभव होता है। अभी जो इतने शांति से बैठे हो तो क्या पुलिस के डंडे के बल से कोई बैठ सकता है? पुलिस की ताकत है कि इतने लोगों को डंडे के बल से बिठा दे? किसी राज्य सत्ता की ताकत है कि अपने सत्ता के बल से इतने दिन तक इतने लोगों को शांति से बिठा दे? राज्य सत्ता वाले भाड़ूती आदमी ले आते, फूड पैकेट देते 50-60-100 रुपया जैसा ठेका, ठेकेदार को बोलते हैं हमको 5,000 आदमी की 4,000 आदमी की भीड़ करनी है, तो वो गाड़ियां सरकारी अथवा नेताओं की लागवक से आरटीओ का उपयोग करके कई लोग भीड़ करने के लिए जुटाए जाते, फिर भी इतनी भीड़ वो नहीं कर पाते और ऐसे लोगों को नहीं जुटा पाते और फिर इतने दिन बिठाने की ताकत उनमें नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात आपको अनुभव में आए ऐसी, लेकिन यहां क्यों हो रहा है न मंत्र शक्ति का प्रभाव। मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति का प्रभाव है कि नहीं है? नहीं लगता है ना? कोई बड़ा ऑफिसर अथवा बड़ा नेता भी मनुष्य है, लेकिन बिठा दे इतने आदमी इतने दिन तक कोई भी बड़ा नेता, अगर उसके पास आध्यात्मिक दैविक शक्ति है तो बिठा सकता, नहीं तो नहीं बिठा सकता। चाहे कितने ही पैकेज रोज बोलता जाए, उसके चमचे होंगे, बाड़ूते आदमी होंगे, बाकी सभी सज्जनों आदमियों को इस ढंग से वो बिठा नहीं सकता। तो मानना पड़ेगा कि मंत्र शक्ति का अपना प्रभाव है। तो व्यास जी ने मंत्र दिया, मंत्र दिया, और महाराज उसने निर्दोष हृदय था, बालक था, जप चालू कर दिया। तो आज सुबह सत्संग में बताया था कि हवन और यज्ञ करने से जो लाभ और पुण्य होता है उससे 10 गुना लाभ जप यज्ञ से होता है, और जप यज्ञ से 100 गुना उपांशु यज्ञ उपांशु जप से होता है। अर्थात माला पे जप रहे हैं, होठों में बोल रहे हैं, तो यज्ञ से 10 गुना फल होता है उसका, मंत्र जाप का। फिर होठ नहीं हिलते, खाली कंठ और जीभ में कुछ हो रहा है, तो ये उपांशु है, ये 100 गुना प्रभावशाली। और बाद में अभ्यास बढ़ते बढ़ते हृदय में ही मंत्र का जप हो तो उसका 1000 गुना प्रभाव हो जाता है। तो दैविक शक्तियां, दैविक स्वभाव, रितम भरा प्रज्ञा, सत्य से भरी हुई मति का हिस्सा प्रकट हो जाता है। तो कुशारु ऋषि का बेटा मित्रा मां के कोख से पैदा हुआ मैत्रेय, 10-11 साल का था। व्यास जी फिर प्रकट हुए, बोले मैत्रेय, मातृ गया तीर्थ पे सिद्धपुर, कार्तिक क्षेत्र भी उसको बोलते हैं, नंद भद्र ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, 80 साल का विद्वान ब्राह्मण खूब तपस्या करके कृश हो गया है, जाओ उनको तपस्या से निवृत्त करो, उनकी शंका समाधान करो। मैत्रेय ने ये नहीं कहा कि गुरुजी मैं कैसे कर सकूंगा, उसको विश्वास और मंत्र शक्ति से मनोबल बुद्धि बल था, जो आज्ञा। कार्तिक क्षेत्र नंद भद्र ब्राह्मण के पास वो 10-11 साल का बालक जाकर खड़ा हुआ कि ब्राह्मण देव, आप किस निमित्त इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहते? बोले मैं कठोर तपस्या करता हूं कि भगवान से कुछ शंका समाधान करना चाहता हूं, मेरा सवाल ऐसा है कि कोई मनुष्य उत्तर नहीं दे सकता। क्या सवाल है आपका? बोले इतना अन्याय हो रहा है, अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग मौज मार रहे हैं, कोई फिल्म दुनिया वालों ने भी बजट ठोक दिया था, सच्चे वेखी पाए चढ़ंदे झूठे मौज उड़ांदे, हक दूजे दा मार मार के पण गए लोग अमीर, लोग कहे ये रब दी माया, मैं कहनू अन्याय वेख मैं झूठ बोलिया, कोई कुपड़ तो लिया, वो भले भले करके नाचे कूदे और फिल्म का गाना बनाने वाले ने रोकड़ी कर ली, लेकिन हकीकत में भगवान की दुनिया में अन्याय होता ही नहीं, जो होता है न्याय ही होता है। चाहे इस समय तुम्हारी मति में आगे पीछे का गणित नहीं है इसलिए आप बोलोगे अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय नहीं होता है, न्याय ही होता है। सृष्टि के कर्ता भगवान है, और सृष्टि में अन्याय हो जाए तो सृष्टि की परंपरा नष्ट हो जाएगी। न्याय के बल से ही सूर्य चमकता है, न्याय के बल से ही पृथ्वी में रस है, न्याय के बल से ही इतने लोग सुख शांति से बैठे। अपने को नहीं दिखता कि अभी अपने को देखेगा कि अन्याय है। तो नंद भद्र ने कहा कि इतना अन्याय है, तब मैत्री ने कहा महाराज, भगवान की सृष्टि में अन्याय नहीं होता है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, फल देने की व्यवस्था परमेश्वर के हाथ में है, कौन से कर्म का कब कहां फल दे वो उसकी तरफ है। हम नहीं जान पाते इसलिए हम बोलते कि ये उचित हुआ, ये अनिच अनुचित हुआ, ये अन्याय हुआ। अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग मौज करते हैं, ये बात नहीं है महाराज। अच्छे लोग विफल होते ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छे लोग विफल ही होते रहते तो अच्छे लोगों के कोई मकान, घर अथवा यश नहीं होता। बुरे लोग मौज उड़ाते तो बुरे लोगों का ही आदर सत्कार पूजन होता। अभी भी अच्छे ब्राह्मणों के चरणों में राजा सिर झुकाते, बुरे लोगों को तो राजा अभी भी फांसी चढ़ाते। अच्छे आदमी, सच्चे आदमी तो सच्चे को चाहते हैं, लेकिन बेईमान मंत्री भी ईमानदार सचिव, ईमानदार सेक्रेटरी, ईमानदार दोस्त चाहता है। बेईमान पति भी चाहता है मेरी पत्नी ईमानदारी से मेरे को पेश आए। बेईमान पत्नी भी चाहती कि मेरा पति मेरे से बेईमानी ना करे। ईमानदार को सब चाहते हैं। और सृष्टि के मूल में ऐसा है ही नहीं कि अन्याय करने वाला सुखी रहे और सज्जन आदमी दुखी रहे। हाँ, सज्जन आदमी कहीं विफल हो रहा है तो उसकी लापरवाही है, उसकी इतनी तत्परता नहीं है, उसका इतना उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम नहीं लगा है। और बुरा आदमी दिख रहा है तो उसके वो छह गुण जो हैं वो लगे, तभी परमात्मा सत्ता उसको सफलता देती। फ्रिज अच्छा है, ठंडा पानी बनाता है, और गीजर बुरा है, गर्म पानी बनाता है। लाइट अन्याय करती है, अच्छा बढ़िया फ्रीजर को, रेफ्रिजरेटर को कुछ बिजली देती नहीं, होती नहीं, और गीजर पानी उबाल रहा है। लाइट अन्याय नहीं करती, फिटिंग में कहीं गड़बड़ है, गीजर में कहीं ठीक ठाक सप्लाई है, और फ्रिज में सप्लाई की कुछ व्यवस्था गड़बड़ है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है।